ओम शांति। स्नेह के सागर को कौन से बच्चे प्रिय है? हम बच्चे। कौन से बच्चे प्रिय है? भोलेनाथ बाप के परमात्मा डायरेक्टरी में विशेष वीआईपी कौन है? वरदान था। परमात्मा डायरेक्टरी में विशेष वीआईपी भोले बच्चे है। बाप का गायन है भोलानाथ, और भोलानाथ भी है, सब कुछ भूला हुआ है। चतुर सुजान बाप को बाह्यमुखी चतुराई पसंद नहीं है। बाप को कौन प्रिय है? जो भोले है, जो सच्चे है, जो स्नेह के सागर में समाये हुए है, जो भाववान है, जो भावना में डूबे हुए है, जो भावनाओं से परिपूर्ण है, ऐसे बच्चे उसे बहुत प्रिय है। तो आज से कितने साल पहले चलना है? आज 35 साल पहले यहां कौन बैठा था उस समय? विदेशी। और हम कौन है? हम भी तो विदेशी है। और वहां कौन बैठा था? कर्नाटक बैठा था, और मधुबन बैठा था, और सेवाधारी बैठे थे, और कौन बैठा था उधर? और बाप किसको देख रहा था? संकल्प शक्ति से समीप, बाप के समीप कौन अनुभव कर रहा था? संकल्प शक्ति से बाप के समीप कौन अनुभव कर रहा था? जो यहां थे ही नहीं, जो यहां है ही नहीं, जो कहीं और है विश्व के किसी कोने में, संकल्प शक्ति से ऐसे बच्चे बाप को समीप अनुभव कर रहे थे। आप गयाना में थे, गाना गा रहे थे। तो बाप दादा को कौन से बच्चे प्रिय हैं? जो भावनाप्रद, भावना से परिपूर्ण, भावनाओं से ओतप्रोत। और किसको ऐसा ज्ञान सुनाता है वो, जो इतना गुह्य राज किन बच्चों को सुनाता है? जो लाडले है, जो सिकिलदे है, जो अति प्रिय है उसके। गीता अर्जुन को क्यों सुनाई? बहुत सारे थे, भीम भी था, नकुल सहदेव भी थे, पर अर्जुन को ही क्यों सुनाई? गीता में ही इसका उत्तर है कि हे कौन्तेय, मैं ये गीता तुमको सुना रहा हूं। युधिष्ठिर भी तो था, फिर अर्जुन को ही क्यों सुनाई? क्योंकि तुम मेरे अति प्रिय हो, क्योंकि तुम मेरे मित्र भी हो, तुम मेरे अनन्य भक्त भी हो। इसके लिए ऐसा ज्ञान, राजविद्या राजगुहम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धम्य सुसुखम कर्तव्ययम। राजविद्या, सभी विद्याओं में जो विद्या राजा है, राजविद्या राजगुह्यम, सबसे गुह्य अति गुह्य। तो बाप दादा खास गुह्य ज्ञान, गुह्य राज किसको सुनाते हैं? अपने सिकिलदे बच्चों को, जो भाववान है। और भाववान होने के कारण ही क्या है? भाग्यवान है। और भाग्य विधाता भी भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। भगवान किस चीज का भूखा है, किस चीज का वो प्यासा है? भावना का प्यासा है, प्यार का पास प्यासा है। भक्ति में उसे भक्तों ने पुकारा। किन्होंने पुकारा? जो भोले थे, द लॉर्ड ऑफ द इनोसेंट, गरीब निवास कहा जाता है उसे, जिनमें बहुत भावना है। एक बार इसी हॉल में जब बाबा थे, साकार बाबा, और मुरली चल रही थी, तो बाबा ने कहा कि ये यज्ञ माताएं चलाती है। बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं के सर पर रखा है, सुबह सुबह की बात। और किसी भाई ने पूछा कि बाबा आपने माताओं के सर पर ज्ञान का कलश क्यों रखा, माताओं को क्यों जिम्मेवार किया इस यज्ञ के लिए? तो बाबा ने कहा, सुबह सुबह का समय, इसी वक्त कहां जाओ, किचन में जाओ, भंडारे में जाओ, इसी वक्त, अभी के अभी। और वो भाई भंडारे में गया तो क्या देखा, एक अद्भुत दृश्य देखा। एक माता, उसके पास तीन चार पुड़िया थी, किसी में गेहूं, किसी में चावल, किसी में दाल। एक एक डिब्बा खोलकर उसमें डाल रही थी। तो कौन चला रहा है इसको? भावना। तो बाबा ने आज कौन सा चार्ट चेक किया? भावनाओं का चार्ट चेक किया, स्नेह का चार्ट चेक किया और सेवाओं का चार्ट चेक किया। किस रूप में आया है आज बाबा, किस रूप में आया है, क्या रूप है उसका, क्या बनकर आया है, क्या बनकर आया है? मार्शल बनकर आया है। और क्या बनकर आया है? और एक चीज बनकर आया है, चेकर। और क्या बनकर आया है? फुलवाड़ी में फलित कितनी अच्छे अच्छे फूल है, तो बागवान बनकर आया है। कहा ना, कर्नाटक की फुलवाड़ी। तो बाप बागवान बनकर आया। और क्या बनकर आया है? मार्शल बनकर आया है। मार्शल अर्थात जनरल, आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में। और क्या चेक कर रहा है? जैसे वो मार्शल क्या करते हैं, एरिया और नक्शा, नक्शा रहता है उनके पास, चार्ट रहता है। तो बाप दादा भी आज चेक कर रहे हैं, स्नेह को चेक कर रहे हैं। रिजल्ट सुनाई? पिछली बार भी कुछ चेक किया था। क्या चेक किया था पिछली बार? स्नेह को चेक किया था, अटूट कितना है, स्नेह का धागा कितना अटूट है, परिस्थिति और व्यक्तियों की ऊंची दीवारों को क्रॉस पार करके आए हैं। गांठ तो नहीं है, कमजोरी और कारण की। स्नेह को चेक किया, कमजोरी को चेक किया, सहयोग और शक्ति स्वरूप के पेपर को बाप दादा ने चेक किया और आज भी चेक कर रहे। चेकिंग में मजा आता है ना बाबा को। हर सेवाधारी और हर सेवा केंद्र का चार्ट चेक किया। नीचे एक जगह कहा पेपर देख रहे हैं, तो चार्ट भी चेक किया और पेपर भी चेक किया। और क्या देखा? हर एक बच्चे का हर समय की, सारे दिन भर की, कौन कौन सी स्टेज में कौन कौन है। आगे एक जगह बोला ना, सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो या मिक्स्ड, ऐसी तो नहीं है। तो बाप दादा स्टेजेस को चेक कर रहे हैं। मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, साकार महावाक्य है बाबा के, कि मैं सब कुछ जानता हूं, कौन क्या है, कौन कैसा है, मैं सब कुछ जानता हूं। तो बाबा ने आज उन बच्चों को देखा जो अति भोले हैं, जो भाववान है और जो भाग्यवान है, और भाग्य विधाता बनकर आया है उनके सामने, भावनाओं से उत्प्रोत। बाबा किसको नहीं देखते और क्या देखते हैं? भाषा को नहीं देखते। किसको देखते हैं? भावनाओं को देखते हैं। भाषा के ऊंचे शब्दों को नहीं देखते हैं, भावनाओं को देखते हैं। किस भाव से, कितनी अनन्य भाव से कौन मुझे याद कर रहा है? जितना अनन्य भाव होगा, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसा अगर दृढ़ संकल्प होगा, कल का वरदान था ना, एक बाप दूसरा ना कोई ऐसा दृढ़ संकल्प होगा तो सहज और स्वतः एकर स्थिति हो जाएगी, पुरुषार्थ में लिफ्ट मिल जाएगी, सर्व प्राप्तियां हो जाएगी, अविनाशी भव अमर भव का वरदान प्राप्त हो जाएगा और अविनाशी सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुट जाएगी। तो ऐसे जो है जिनका केवल एक है और एक के सिवा कोई नहीं, इतनी भावना अंदर समाई हुई है, ऐसे बच्चों को बाप दादा देख रहे, ऐसे बच्चों को बाप दादा देख प्रसन्न हो रहे, ऐसे जिनको भाषा भी नहीं आती, उनकी भाषा को नहीं देखते, ऐसे नहीं समझना कि अपने आप को पीछा बहुत, हम पीछे ऐसा मत समझना। बाबा के सामने है, ये माता को बहुत नशा है। तो जहां बहुत ज्यादा ज्ञान होता है वहां धीरे धीरे अहंकार भी आ जाता है, अहंकार की आने की मार्जिन जहां वहां रहती है, परंतु जहां भावनाएं हैं, बहुत भावना, वहां पर नम्रता होती है। दिखाया है चैतन्य महाप्रभु एक बार जा रहे हैं साउथ में, एक गीता पर प्रवचन चल रहा है, वो चल रहा है हिंदी में और भक्त बैठे हुए हैं, उसमें से एक भक्त है जिसे हिंदी में नहीं समझ में आती है, वो केवल उधर की भाषा जानता है तेलुगु या तमिल, और उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो उसको पूछते हैं कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है जो प्रवचन चल रहा है गीता पर? वो कहते हैं मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं केवल इतना देख रहा हूं कि रथ है, श्री कृष्ण है और अर्जुन है और गीता ज्ञान सुनाया जा रहा है, बस ये दृश्य देख कर ही मुझे आंसू आ रहे हैं। समझने की तो बात ही नहीं, बस इतना भाव कि स्वयं भगवान सुना रहे हैं, ये दृश्य देख कर ही आनंद आशु। विश्व विदेश में एक लेखक हुआ है लियो टॉल्स्टॉय, उसने एक कहानी लिखी है थ्री हर्मिट्स, तीन सन्यासी, एक जगह तीन सन्यासी थे, एक टापू पर रहते थे और अनपढ़, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, जिन्होंने कभी शास्त्र कोई पढ़े नहीं थे और भगवान की बहुत अनन्य भाव से प्रार्थना करते थे, कहते थे कि हम तीन हैं, तू तीन, तुम तीन हो, बस उनको बोलने भी नहीं आता था, बस प्रार्थना करते थे, पर उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि जो भी उनके पास जाता था सिद्धियां प्राप्त थी उनको, जैसे कि तो वहां का जो पादरी था बिशप, उसको बड़ा गुस्सा आया, ये बाइबल में जैसा लिखा है उस तरह से ये प्रार्थना नहीं करते, शास्त्रों के विरुद्ध प्रार्थना करते, इनको मैं सिखाता हूं जाकर कि प्रार्थनाएं कैसी करनी चाहिए, कैसे भगवान से बात करनी चाहिए। वो जाता है उनके साथ और उनको पूरा सिखाता है, वो भी बड़े अनन्य भक्तिभाव से नीचे बैठते हैं तीनों और सीखते हैं कि भाई हमको सिखाओ, हमको तो आता ही नहीं भगवान से कैसे प्रार्थना करना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए भगवान से, वो भी नहीं आता हमको। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें सब समझाता हूं, कैसे भगवान से बातें करनी चाहिए, क्या किस तरह से उससे कुछ मांगना चाहिए, इस तरह की सारी बातें उनको सिखाता है और वो बड़ा संतुष्ट होता है, अहंकार तृप्त होता है कि मैंने भी कुछ बड़ा काम कर दिया, अज्ञानियों को ज्ञान का मार्ग बता दिया और सिखाकर अपनी नाव से टापू से रवाना होता है। और थोड़ी देर के बाद देखता है तीन प्रकाश की आकृतियां दौड़े दौड़े आ रही है उसकी तरफ, वो देखता है ये कौन आ रहा है, देखता है ये तो वही तीनों सन्यासी है, समुद्र के ऊपर चलकर आ रहे हैं भागते भागते उसकी तरफ। तो वो तीनों कहते हैं कि गुरुजी रुकिए, आपने जो प्रार्थना सिखाई हम भूल गए, हमें फिर से समझाओ, फिर से सिखाओ। तो वो देखता है कि ये तो जो प्रार्थना तुम पहले कर रहे थे बस वही चालू रखो। इनकी जो प्रार्थना है इसी प्रार्थना से इन्हें कितनी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, अब मैं क्या इनको प्रार्थना सिखाऊं। जहां भावना है वहां भगवान है, तो भगवान को क्या प्रिय है, अति प्रिय जो है भावना प्रिय है, स्नेह प्रिय है, जो स्नेही है वह उसे प्रिय है। नाहम वसामि वैकुंठे, भागवत में एक श्लोक है, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगी नाम हृदय न च, मैं योगी के हृदय में भी नहीं हूं, मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरा भक्त जहां अनन्य भाव से मुझे पुकार रहा है, मेरा कीर्तन कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद सुन मैं वहां हूं जहां भावनाएं हैं। तो बाबा आज किस किस से मिल रहे हैं? विदेशियों से मिल रहे हैं, जो बैठे कहां हैं? यहां। वो क्यों यहां बैठे हैं? वो सुबह सुन लिया आपने क्लास में। और किससे मिल रहे हैं? कर्नाटक वालों से मिल रहे हैं, और पेपर्स को चेक कर रहे हैं, चार्ट को देख रहे हैं, सेवाधारियों से मिल रहे हैं। सेवाधारियों से क्या कहा बाबा ने? अब हम इधर से उधर और उधर से उधर जाएंगे। क्या कहा सेवाधारियों से बाबा ने? जाते समय जन कमाई जमा करके जा रहे हो, मधुबन है वरदान भूमि, तो वरदान भूमि का वायुमंडल को स्मृति में लाते ही क्या हो जाते हैं? समर्थी आ जाती है, शक्ति आ जाती है, केवल वायुमंडल और वातावरण की स्मृति से। क्या कहा सेवाधारियों को? केवल वायुमंडल की स्मृति से ही शक्तिशाली समर्थ रूप बन जाता है, बन जाती है आत्मा। तो यहां के वायुमंडल को साथ में ले जाना है। जाते समय ऐसा अनुभव हो रहा है कि जन्म जन्म की कमाई करके जा रहे हैं। यहां आए किस लिए? कमाई करने आए ना, तो जन्म जन्म की कमाई करके जा रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। वायुमंडल से मैं बदलने वाले नहीं, वायुमंडल को बदलने वाले, वायुमंडल में बदलने वाले नहीं, वायुमंडल को बदलने वाले। तो ये ऐसी भूमि है। कौन सी भूमि है ये? वरदान भूमि। कौन सी भूमि है ये? तपोवन। कौन सी भूमि है ये? पावन भूमि। कौन सी भूमि है ये? सौ नाम बताओ। वरदान भूमि है, और चरित्र भूमि है, और कर्म भूमि है, और कर्मातीत भूमि है, और पवित्र भूमि है, और तीर्थ स्थान है, और यज्ञ कुंड है, और महातीर्थ है। जहां हम अब बैठे हैं वो कौन सी भूमि है? इतनी महान भूमि है कि बाबा कहते हैं इसके केवल स्मृति से ही आत्मा शक्तिशाली हो जाती है। इसकी स्मृति को साथ में लेके जाना जाते समय, ऐसी ये महान पवित्र भूमि है चैतन्य दिलवाड़ा, अचल घर है ये, और लाइट हाउस है, और ये माइट हाउस है, और ये शांति स्तंभ है, और पवित्रता का स्तंभ है, और ये ज्ञान स्तंभ है, और ये रूहानी हॉस्पिटल है, और ये अचल घर है, और ग्लोबल हॉस्पिटल है, विश्व के रोगियों का यहां पर इलाज होता है, विकारों से पीड़ित आत्माओं का यहां इलाज होता है, यहां पर ज्ञान के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और कौन सी भूमि है ये? ये है सच्चा सच्चा हरिद्वार, ये है सच्ची सच्ची गौशाला, ये है सिद्ध भूमि, सिद्धि प्राप्त करने की भूमि। और शैलेंद्र भाई कौन सी भूमि है ये? पांडव भवन, ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर, शांतिवन है ये। शांतिवन है कि नहीं? है ना। ज्ञान सरोवर है कि नहीं? है ना। पीस पार्क, यही पीस पार्क है ना। और सुखधाम, और कुंज भवन, और ओम शांति भवन, और लाइट हाउस, और विशाल भवन। कितना विशाल भवन है ये? स्वदर्शन भवन। और टीचर ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है विश्व का? यहीं पे ट्रेनिंग होती है ना। और कौन सी भूमि है ये? मधुर भूमि है, और मनोरंजन भूमि है, और विश्व का शोकेस है, और बेहद का एयरपोर्ट है। परिवर्तन भूमि है, परमात्मा अवतरण भूमि है। यहाँ पर इस भूमि पर किसके कदम पड़े हैं? स्वयं भगवान के चरण, चरणों से पुनीत हुई है ये भूमि, महान आत्माओं के चरणों से पुनीत हुई है ये भूमि जहां पर आज हम बैठे हैं। और कौन सी भूमि है? यज्ञ भूमि है, यज्ञ कुंड है, परिवर्तन भूमि हो गया, और जादू की नगरी है, पुण्य भूमि है, शांति कुंड है, और शीश महल है, और सुखधाम, और एस्लम है, और फरिश्तों की दुनिया, फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, चलो फरिश्तों की दुनिया भी है और राजेश भाई कौन सी भूमि है ये? बेहद का एयरपोर्ट, बेहद का क्लब, बेहद का पोस्ट ऑफिस। बेहद का पोस्ट ऑफिस है कि नहीं? और कारखाना है ये, इधर से मनुष्य डालो और उधर से देवता निकलते हैं, तो मनुष्य से देवता बनने का कारखाना है ये, टॉप का स्थान है, टॉप की भूमि है। और शक्ति स्तंभ, शांति स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ, वो सब हो गया। बेहद का धोबी घाट है ये, राजेश भाई क्या है ये? बेहद का धोबी घाट। सूक्ष्म स्थूल प्राप्तियों की खान है, खुशियों की खान है, आनंद की खान है, सर्व प्राप्तियों की खान है, सर्व खजानों की खान है, मालामाल बनने की भूमि है, मिलन भूमि है, महायज्ञ, तपोवन, चित्रशाला है, और म्यूजियम है, और गीता पाठशाला है, और यूनिवर्सिटी है, और स्कूल है, लाइब्रेरी है, चल विश्व की लाइब्रेरी सबसे बड़ी, वो इधर दिखाते हैं अलेक्जेंड्रा लाइब्रेरी और नालंदा और तक्षशिला, उससे भी बड़ी लाइब्रेरी है ये, और शिवालय है ये, सबसे बड़ा मंदिर है ये, सर्व आत्माओं की सिक्योरिटी का स्थान है, अंतिम हट्टी, सच्ची सच्ची हट्टी, बेहद का भंडारा, मातेश्वरी, जगदम्बा भवन है ये। मधुबन में जितने मकान है सबके नाम बोलो, मधुबन के मकानों के नाम सारे मधुबन, ज्ञान विज्ञान की भूमि है ये, मुरलियों में आता है, साकार मुरलियों में, हाँ, योगी भवन है, राजयोग भवन है, और हाँ कमल कुंज हो गया, राज ऋषि, राजयोगी, राज ऋषियों की कुटिया है ये, लकी भवन कहाँ है वो? इधर लकी हाउस, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, ये इंद्रप्रस्थ है। तो बाबा कह रहे हैं ये ऐसी भूमि है, तो जब जाते हो तो ये अनुभव हो कि जन्म जन्म की कमाई कर यहां से जा रहे हो, इस वातावरण को स्मृति से ही, इस वायुमंडल के स्मृति से ही समर्थ बन जाएंगे, ऐसी ये शक्तिशाली भूमि है। और ये घर है हमारा, घर तो बोला ही नहीं आज बाबा ने, घर किसको कहा है? सूक्ष्म वतन को घर कहा है, सूक्ष्म वतन भी हमारा घर है, तो परमधाम भी हमारा घर है, तो मधुबन भी हमारा घर है, एक है लौकिक घर और एक है सेवा केंद्र, ऐसे पांच घर। जो ब्रह्मा का स्थान वह बच्चों का स्थान, क्योंकि ब्रह्मा और बच्चों का संबंध है। तो ऐसी महान भूमि पर हम बैठे, हम कहां थे, किससे मिल रहे हैं बाबा? तो सेवाधारियों से मिल रहे थे, और किससे मिल रहे थे? कर्नाटक वालों से मिल रहे थे। क्या कहा और कर्नाटक वालों को बाबा ने? भावना वाले, कोई कोई धरती जो होती है वो पहले ज्ञान और फिर प्यार स्नेह, और कोई कोई पहले स्नेह और फिर बाद में समझ में आता है ज्ञान क्या है, पहले तो ऐसे ही खींचकर आ जाते हैं बाप के प्यार में। तो बाबा बोला है, तो अपने को ये नहीं समझना कि हम बहुत पीछे हैं। क्या समझो? बाप किसको देखते हैं? भावनाओं को देखता है और भाषाओं को नहीं देखता केवल। अगर पांच लोग बैठे हुए हैं, एक तेलुगु, एक तमिल, एक मलयालम, एक अंग्रेज और एक हिंदी बोलने वाला, किसकी बातें बाबा के पास पहले पहुंचेगी? हिंदी बोलने वाले की, क्योंकि बाबा की भाषा है। किसकी पहुंचेगी पहले? हिंदी वाले की कि मराठी वाले की? सिंधी वाले की ज्यादा जल्दी पहुंचनी चाहिए। तो भावना वाले की भाषा बाप तक पहुंचती है। और क्या कहा बाबा ने आज? विदेशियों से क्या कहा? विदेशियों की भी कुछ विशेषताएं सुनाई बाबा ने। कर्नाटक में दादियों को को याद किया। कौन सी दादियों को याद किया? दो दादी को याद किया, चंद्रमणि दादी को याद किया और हृदय पुष्पा दादी को याद किया। क्या क्या कहा दोनों को? हृदय पुष्पा दादी कैसे है? करणहार। और कैसे है? प्रेम स्वरूप। और कैसे है? लवफुल। और लवफुल, प्रेम स्वरूप, करणहार। और चंद्रमणि दादी के लिए क्या कहा? करण करावन हार, लवफुल और लॉफुल और नॉलेजफुल। तो ये क्या कहा? क्या है दोनों? मजेदार जोड़ी। केवल जोड़ी नहीं, मजेदार जोड़ी है। भोले बच्चे बाप को बहुत प्रिय है। इन्हीं अदाओं पर फिदा है। इधर अच्छा, तो बाबा ने दादियों को याद किया। और कर्नाटक वालों की कौन सी विशेषता है? नहीं, डबल विदेशियों की और कौन सी विशेषता देखी फिर बाबा ने? धर्म, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए थे पर अपने प्राचीन धर्म को क्या कर लिया? प्राचीन धर्म को क्या कर लिया? पहचान लिया और अपना लिया, और अपना कर तीव्र पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं। और शांति और स्नेह है, इसकी वजह से ये प्राप्ति मिली है उनको, इसके वजह से संशय नहीं होते। एक बार चल पड़े तो चल पड़े, एक बार निश्चय हो गया यही सब कुछ है तो बस यही सब कुछ है, फिर पीछे नहीं हटेंगे, फिर पीछे नहीं मुड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार इस मार्ग पर चल पड़े तो हमेशा के लिए चल पड़े, फिर पीछे देखना ही नहीं, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, अब ये एक ही मात्र मार्ग है। और विदेशियों से क्या कहा बाबा ने जाते समय? कि यहां से जाते समय क्या करो? लास्ट पैराग्राफ, पांचवी पार्टी, विदेशियों से मुलाकात। विदेशियों से मुलाकात करते समय क्या बाबा ने यहां से उनको वहां बुलाया था? सुशील भाई, जब पर्सनल मुलाकात हुई, चिमन भाई यहां से वहां बुलाया था उनको? बैठे तो यहां थे पर जब पर्सनल मुलाकात हुई तो वहां बुलाया था? याद नहीं। तो बाबा ने विदेशियों से क्या कहा? कि यहां से जाते हो तो क्या बनकर जाओ? लाइट हाउस बनकर जाओ। क्यों लाइट हाउस बनकर जाओ? क्योंकि जो भटकने वाले हैं उनको रास्ता बताना है, यथार्थ मंजिल और सहज मंजिल तक पहुंचाना है उनको, यथार्थ और सहज मंजिल तक। लास्ट संडे भी कहा था विदेशियों से मुलाकात, एक सेकंड की शांति के लिए भटक रहे हैं। स्नेह स्वरूप, शांति स्वरूप, चाहे भाषण करो चाहे ड्रामा करो, दोनों का बैलेंस हो, अनुभव कराओ। तो विदेशियों को भी क्या कहा? इसके लिए दो चीजें चाहिए, एक तो परखने की शक्ति। उदाहरण दिया किसका? कौन से डॉक्टरों का है? नाड़ी, नाड़ी कौन देखते हैं? आयुर्वेद वाले डॉक्टर देखते हैं ना। तो जैसे वो नब्स को देखते हैं तो वैसे भी परखने की शक्ति, किस आत्मा को क्या चाहिए, ये परखने की शक्ति होनी चाहिए। और दूसरी बात कौन सी कही? सर्व खजाने कायम रहे। खुद अनुभवी मूर्त है तो ही दूसरों को अनुभव करा सकते हैं, अगर खुद ही अनुभवी मूर्त नहीं है तो दूसरों को अनुभव नहीं करा सकते। तो बहुत सारे मेडल्स मिले हुए, कौन कौन से शक्तियों के मेडल्स को क्या नाम दिया? मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्व संबंधों के मेडल को क्या नाम दिया? सर्व स्नेही। और गुणमूर्त, सर्व गुणों के टाइटल्स, गुणमूर्त। जैसे उदाहरण दिया और एक, यहां पर उस डिपार्टमेंट में टाइटल्स होते हैं, जैसे वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, शायद स्टूडेंट्स, जैसे उनके टाइटल्स होते हैं, तो जितने ज्यादा टाइटल्स उतने आकर्षण करते हैं, उतना ज्यादा आकर्षण करते हैं। तो सारे टाइटल्स पहन कर जाना है। तो इस भूमि पर आए हो तो स्वयं अनुभवी मूर्त बनना है और दूसरों को अनुभव के खान, अनुभव के खजानों से भरपूर करना है। वो कर तभी सकेंगे जब हम स्वयं अनुभव से भरपूर है। तो किसका अनुभव? परमात्मा प्रेम का अनुभव, शक्तियों का अनुभव, सर्व खजानों का अनुभव, ज्ञान गुण शक्ति अपवित्रता खुशी आनंद संतुष्टता पुण्य, दुआएं, ये सारे खजाने हैं। ये सारे खजानों से हम जितना परिपूर्ण हैं, हम उसी अनुपात में दूसरों को दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो स्वयं को भरपूर करना, संपन्न करना इस भूमि पर, और लाइट हाउस और माइट हाउस बनकर जाना। फिर बाबा किससे बात किए, और किससे बात किए? मधुबन निवासियों से बात किया। क्या कहा मधुबन निवासियों को? जो चूल पर है वो दिल पर है। उनको कैसा मिलता है सब कुछ? गरम गरम, तवा टू माउथ, हॉट। और तीन विशेषताएं सुनाई मधुबन निवासियों की, कौन सी? निद्राजीत है, अथक है, अथक है और निद्राजीत है। सुबह बता रहे थे ना शिलुबेन, रात भर बाबा तो कितने बजे तक बैठते थे पता नहीं, कभी दो कभी तीन, तो रात भर सेवा में लगे रहते थे, चाय तो सहयोगी। और एक विशेषता बताई मधुबन निवासियों की, कौन सी? जनरेटर चलाने वाले। अरे ये अच्छा, चलो वो अथक में आ जाएगा। रात भर जनरेटर चलाते रहे क्योंकि बिजली जाती रही, क्योंकि वैसी रौनक यहां नहीं है। अच्छा ठीक है, वो अथक में आ गया, वो अथक है। और चौथी और एक विशेषता है चिमन भाई, कौन सी? पानी नहीं, जी 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 हाजिर और जी हजूर। जी हाजिर अर्थात हम उपस्थित है, आई एम प्रेजेंट, और जी हजूर अर्थात यस माय लॉर्ड, हा। तो ये दो विशेषताएं उनमें है, तो अथक है और निद्राजीत बनकर सेवा कर रहे, और सदा जी हाजिर है और जी हजूर है, और चुल पर है सो दिल पर है, जो भगवान की भूमि पर रहते हैं, इसके लिए विशेष प्रेम है सबसे। अभी अभी एक क्या कहते हैं उसको, पीएमटीवी पर नया एक सीरियल या डॉक्यूमेंट्री रूहानी राह, जिसमें मधुबन निवासियों के अनुभव है, यहां बैठे हुए चिमन भाई का भी उसमें अनुभव है, चिमन भाई का अनुभव है, छोटेलाल भाई का अनुभव है, अशोक भाई का अनुभव है, राजकुमार भाई का अनुभव, अभी जो मधुबन में है महेश भाई जी का अनुभव है, हाँ बहुत सारे भाइयों के अनुभव उसमें है, और बहुत अच्छी तरह से है। तो वो उन भाइयों के अनुभव जो कितने लंबे समय से यहाँ है, देवू भाई का है, अवतार भाई का है, कई भाइयों के उसमें अनुभव है, वो बहुत अच्छा फिल्माया गया है। तो जो यहाँ रहते हैं 30-35-40 साल से, उनके अनुभव उसमें है। फिर किससे मिले बाबा? नहीं नहीं, सफलता का आधार अभी बाद में। फिर बाबा ने एक ही प्रश्न 9 बार पूछा है, एक ही प्रश्न पूरी मुरली में, सूक्ष्म वतन का कारोबार कैसे चलता है, सूक्ष्म वतन का कारोबार किस शक्ति से चलता है, किस सूक्ष्म वतन का कारोबार किस पावर से चलता है, जैसे तुम्हारा इस वतन का कारोबार साधनों से चलता है, जैसे सतयुग का कारोबार एटॉमिक एनर्जी से चलता है, वैसे इस सूक्ष्म वतन का कारोबार कैसे चलता है? कैसे चलता है? शुद्ध संकल्पों से चलता है। ये है गुह्य राज, इशारों की रूपरेखा और शुद्ध संकल्प और मनोबल से चलता है, ये राज बाबा ने सुनाया है। और कौन कनेक्शन कर सकता है? वहां पर तो वायरलेस का है, यहां पर क्या चाहिए? वॉइसलेस। बाप बटन दबाते हैं और इमर्ज होता है। उदाहरण दिया जैसे ब्रह्मा के, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि को रचा, तो यहां पर भी मर्ज और इमर्ज का खेल है। और याद कैसी चाहिए वहां पहुंचने के लिए, कनेक्शन कैसा चाहिए? पावरफुल कनेक्शन चाहिए, पावरफुल तार चाहिए जिसमें माया इंटरफियर ना करे। वो कैसी है तार? कौन सी तार है वो? सर्व संबंधों के सार वाली याद, महीन याद, महीन याद, सर्व संबंधों के सार वाली याद, ये कंडीशन है। और वॉइसलेस, ये कैसे करने की? सर्व संबंध एक, एक से प्यार, एक से सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण भाव, एक की याद, सब कुछ एक से सब कुछ आसान है। तो वो ऐसी याद चाहिए, महीन और सर्व संबंधों वाली याद, तो कनेक्शन हो सकता है। माया इंटरफियर नहीं कर सकती है, ये तार इतना पावरफुल तार है। बाबा ने कभी कहा है, जो वॉइसलेस है वही एक दिन वायरलेस बन जाएंगे। और यहां पर फिर बिजली गई, फिर यहां की रौनक। बाबा ने कहा ये सूक्ष्म वतन किसके लिए बनाया गया है? सूक्ष्म वतन कब इमर्ज होता है? अभी। सूक्ष्म वतन अभी इमर्ज होता है किसके लिए? क्या यहां बैठकर उस वतन का अनुभव कर सकते हैं? किसी ने प्रश्न पूछा। और कौन करेगा? तुम्हारा ही घर है, तुम्हारे लिए ही है। जो ब्रह्मा का स्थान वो हमारा स्थान, तो हम ही। और वो जो दूसरे लोग हैं वो तो छोटा सा दृश्य का कोई साक्षात्कार कर सकते हैं, परंतु तुम्हारा तो वो घर है। जब चाहो तब जाओ घर में, शक्ति भरो और आओ। जब चाहो जब जाओ, जब चाहो तब नीचे हो। स्विच संकल्प का मधुबन हो गया, जो बैठे नहीं है वो हो गए, विदेशी हो गए, जो आने वाले हम। मुरली चली थी 80 में, नष्ट मोहा आगे पार्टियों से मुलाकात। ये मुरली 1981 फरवरी 1980 की मुरली है। ये वही दिन था अमेरिका में, उस दिन की माइकल जैक्सन, सुना है माइकल जैक्सन को? उसका एक बहुत बड़ा एक शो था, वो चल रहा था उसी समय शाम को, सारी अमेरिका लाइव उसको देख रही थी। उसका कुछ नाम भी है गीत का, मुझे याद नहीं आ रहा, लाइव विद द रॉक कुछ तो भी, सिंग विद द रॉक ऐसे कुछ। तो संसार उधर क्या कर रहा था और भगवान इधर कुछ और कर रहे थे और हम कहां थे? हम पालने में थे उस समय, अभी अभी आए थे इस दुनिया में। 1980 की मुरली है ना, अभी अभी आए थे एक या दो महीने में बस। सफलता का आधार क्या है? किससे न्यारोपण? सफलता का आधार क्या है? न्यारापन। कौन से संबंधी? न्यारापन की बाबा ने परिभाषा दी है, एक तो देह की स्मृति से न्यारापन, दूसरा ईश्वरीय संबंध के लगाव से न्यारापन, तीसरा सेवा के साधनों के लगाव से न्यारापन। अगर न्यारापन है तो ही सफलता होगी, अगर न्यारापन कम तो सफलता कम। तो सफलता का कनेक्शन किसके साथ है? न्यारेपन के से। तो न्यारा और बाप का प्यारा। और क्या कहा बाबा ने? ये तो अभी फर्स्ट ही है, न्यारापन सफलता का आधार आगे है। दूसरी बात बाबा ने यहां पर चेंज की, छोटा और बड़ा। छोटा कब बनना है और बड़ा कब बनना है? सेवा करते समय बड़ा, और छोटा डायरेक्शन को फॉलो करते समय छोटा। इसी को बाबा दूसरी भाषा में बालक और मालिक। और फिर और एक बात कही बाबा ने संतुष्टता के लिए, उसमें फिर से कहा कि अपने अंदर अगर कुछ है समाया हुआ तो क्या कर दो? सुना दो, हल्के हो जाओ, परंतु फिर बाद में जो डायरेक्शन मिलता है उसको अमल में लाओ, इसमें संतुष्ट हो। अपने पास नहीं रखो, हल्के हो जाओ फिर डायरेक्शन पे चलो। हाँ, बड़े जो है निमित्त आत्माएं जो है उनको बता दो। पर बाबा ने कभी कुछ समय पहले मुरली चली थी, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, सीधा बाप को बता दो, ऐसे भी कहा हुआ है। पर और क्या कहा बाबा ने यहां पर? इसके लिए क्या चाहिए? एक शक्ति की आवश्यकता है, स्वपरिवर्तन। दूसरा सफलता का आधार एक था न्यारापन और दूसरा है डायरेक्शंस को फॉलो करना, ये था दूसरा सफलता का आधार एक। और फिर बात यहां से बाबा ने फिर चेंज की, कभी बाबा कारोबार की बात करते बीच में कर्नाटक को लाया, फिर विदेशियों को लाया, फिर कारोबार, और फिर इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर। फिर क्या कहा बाबा ने, इसके लिए क्या चाहिए, त्रिकालदर्शी बाद में, इसके लिए क्या चाहिए, परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। तो जो स्व को परिवर्तन करते हैं, स्वयं को परिवर्तन करना है, दूसरों को नहीं, स्वयं को बदलना है। इसमें पहले मैं, अगर इसमें पहले मैं होगा तो सब में पहले मैं हो जाएगा। कोई बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है, दूसरे बने या ना बने, मैं बन जाऊं। तो स्वयं, जो दूसरों को बदलते हैं वो मिक्स गोल्ड, और जो स्वयं को बदलते हैं वो रियल गोल्ड है। और वैष्णव कौन है, बीच में वैष्णव को याद किया बाबा ने, जो जन्म से भी किसी भी कमजोरी को टच नहीं करते, वैष्णव। अर्थात वैष्णव किसको कहा जाता है भक्ति में, कृष्ण माता। वैष्णव अर्थात जो विष्णु के भक्त है उन्हें वैष्णव कहा जाता है। एक है वैष्णव, एक है शाक्त, एक है गणपत्य, एक है शैव, और एक है सूर्य के पुजारी। ऐसी पांच पंच देवताओं की भारत में पूजा होती है। तो वैष्णव अर्थात जो विष्णु के भक्त है, या उसके 10 अवतार है उसके भक्त, उसमें भी विशेष राम और उसमें भी विशेष श्री कृष्ण के जो भक्त है उन्हें वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव अर्थात पवित्र, प्योर। तो जो वैष्णव है कोई कमजोरी उन्हें टच नहीं करती है, वो सदा ही सेफ रहते हैं, उनमें संस्कार मिक्स्ड नहीं होते। बाबा ने कहा ना, कुछ संस्कार किसी में तमोगुनी रजोगुनी, कोई रजोगुनी से तत्वगुनी, कोई तमोगुनी से रजोगुनी, और कोई में मिक्स्ड। ये बात बीच में आ गई। तो सफलता के आधार न्यारापन, जो सेवा कर रहे उसमें भी न्यारापन, सेवा में भी लगाव नहीं हो। सफलता का और एक आधार बाबा ने कुछ दिन पहले बताया था मुरली में, क्या था वो, ये है ईश्वरीय सेवा वरदान परसों का। दो वरदान लगातार सेवा पर थे, निस्वार्थ निष्काम, केवल मधुर बोल नहीं, परंतु उसका स्वरूप बनकर त्याग, तपस्या का स्वरूप। सुबह शिलुबेन जी ने सुनाया ना त्याग, कौन सा त्याग सुनाया, कितना उपयुक्त शब्द था वो। बहुत अच्छी बात मुझे जो लगी कि तब से बाबा के सामने बैठकर मुरली सुनना बंद किया, और ट्रांसलेशन बहुत अच्छा शब्द है त्याग। तो ये चार आधार। और दूसरी और एक बात, वरदान गुरुवार का क्या था, हर संकल्प सेवा के प्रति, हर सेवा कैसी भी हो गुप्त, जैसे कि वो भक्त होते हैं गुप्त दानी होते हैं, उसी की तरह जो सेवा विघ्न बने वो सच्ची सेवा नहीं है। तो आज भी बोला, जो डायरेक्शन मिला उस पे चलना तब सफलता होगी, स्व परिवर्तन करेंगे तब सफलता होगी। अभी सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पार्टी से क्या कहा बाबा ने, त्रिकालदर्शी हर कर्म स्वयं को पद्मा पदम भाग्यशाली समझकर करते हो, हर संकल्प और हर बोल। विश्व कल्याण की स्टेज का तो पॉइंट रह गया, तो बाबा ने कहा सब विश्व कल्याण की स्टेज पर रहकर पाठ बजाते हो। विश्व कल्याण अर्थात बेहद के सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी अर्थात बेहद विश्व है, तो बेहद की स्थिति भी तुम्हारी बेहद की हो, इतनी ऊंची स्टेज। छोटे कर्म हो भले साधारण कर्म है, परंतु स्टेज हमारी कौन सी हो, विश्व कल्याणकारी, कि ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूं, विश्व कल्याणकारी कर रहा हूं, विश्व के कल्याण के लिए बेहद की स्टेज पर स्थित होकर करना है। वो माया मगरमच्छ मोह के वहां आ गई। अगर हद है, ये भी सोने की जंजीर है, बाबा ने कहा सेवा में लगाओ, ये क्या है, सोने की जंजीर है। जैसे इसको काटना, लोहे की जंजीर को काटना तो बहुत आसान है, सोने की जंजीर को काटने के लिए हाथ थोड़ा बढ़ता नहीं है, मुश्किल होता है थोड़ा, दिल में थोड़ा भारीपन लगता है। सोने को काटना और फेंक देना ये भारी काम है थोड़ा, लोहे को तो काट दिया पर सोने को कैसे काटे। फिर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करने के लिए क्या कहा वहां पर, जो भी कर्म करते हो वो ऐसे संकल्प समर्थ और व्यर्थ साथ साथ इकट्ठा तो नहीं चलते, संकल्प बोल और कर्म तीनों, संकल्प बोल और कर्म समर्थ के साथ में व्यर्थ, अगर एक सेकंड भी व्यर्थ आ गया तो क्या होगा, पद्मों का नुकसान हो जाएगा। अगर एक सेकंड भी समर्थ हो गया तो क्या हो जाएगा, पद्मों की कमाई हो जाएगी। दोनों हिसाब है इधर, ऑटोमेटिक मशीनरी है। अच्छे कर्म करो और यहां पर अगर कोई विकर्म किया तो वो कमाई छिप जाएगी, बाबा ने कहा। दोनों का हिसाब है, दोनों का खाता है, कमाई का भी है तो घाटे का भी खाता है, दोनों है। फिर यहां विशेष पाठधारी के लिए भी कहा, विशेष पाठधारी अर्थात जो सदा अचल अडोल रहते हैं। एक कालदर्शी बनकर नहीं करनी है, कौन सी स्थिति में बैठकर सेवा करनी है, त्रिकालदर्शी। इस कर्म से क्या परिणाम होगा, क्यों करना है, तभी सफलता होगी। अगर एक कालदर्शी दो कालदर्शी स्थिति में करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो सफलता का चौथा आधार क्या है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर सेवा करना। पहला, लगाव से मुक्त, ईश्वरीय संबंध में भी लगाव ना हो, बाबा ने कहा। ये है तो करेंगे, वो है तो करेंगे, ये नहीं तो सेवा नहीं करेंगे, ये है तो नहीं करेंगे और ये है तो करेंगे। ये संबंधों में भी लगाव, आकर्षण और विकर्षण, ये सेवा किसकी है, उसकी है। फिर क्या कहा बाबा ने, तीसरा ग्रुप अभी है मगरमच्छ। तीसरा ग्रुप स्वयं को क्या समझते हो, संगम योगी ब्राह्मण समझते हो, तो संगम योगी ब्राह्मण अर्थात पुरानी दुनिया से किनारा किए हुए हो, ऐसा स्वयं को समझते हो। उस इस दुनिया में भी बिगर पासपोर्ट के अगर कोई जाता है तो बंदी बना देते हैं। तो यहां पर भी बाबा की परमिशन के बिना अगर कुछ किया तो कौन बंदी बना देगा, माया बंदी बना देगी और जेल के अंदर। मोह की बात बाबा ने कही, जरा भी मोह ना हो, पुरानी देह पुरानी दुनिया और संबंध, नष्टो मोह। नष्ट मोह का वरदान पिता ना, हद की प्रवृत्ति, स्व की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सबसे नष्टो मोह। जब बाप का स्नेह स्वरूप सामने रखोगे तब नष्टो मोह बनेंगे, नष्ट मोह बनेंगे तो स्मृति स्वरूप बनेंगे। अगर मोह है तो बाप की याद नहीं आ सकती। और ज्ञान का सबसे पहला आघात मोह पर ही होता है। अगर ज्ञान हमारा बढ़ता जाए तो धीरे धीरे मोह नष्ट होगा। ज्ञान प्रकाश है और मोह अंधकार है। तो ज्ञान को बढ़ाओ तो मोह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सब व्याधियों का मूल कारण बताया है। इसके लिए मोह रखना है तो मोह को परिवर्तन कर दो, और किस में कर दो, बाप की तरफ कर दो। या फिर किसी व्यक्ति से मोह है तो उस मोह को सार्वजनिक मोह कर दो, तो वो प्रेम में परिवर्तन हो जाएगा। एक व्यक्ति से है ना, अब सब व्यक्तियों से कर दो सार्वजनिक, तो वो प्रेम का स्वरूप धारण करेगा। और क्या कहा बाबा ने दूसरी, हाँ अभी अगर थोड़ा भी मोह है तो मगरमच्छ पहले थोड़ा पकड़ेगा और फिर बाद में पूरा हब कर लेगा। मगरमच्छ हर समय मुंह खोल के ऐसे बैठा ही हुआ है, कब किसने कोई गलती किया और खाया, हर समय सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा भी कुछ किया। इसके लिए लास्ट संडे कहा था ना, व्रत धारण करो, कौन सा, अमृत वेले से तो रात तक ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का पालन करना, यह व्रत धारण करना है। जो भी ईश्वरीय नियम है और मर्यादा है उसका पालन करेंगे तो यही सर्वश्रेष्ठ मत है, यही लास्ट मार्जिन है, यही अंतिम चांस है। और क्या कहा बाबा ने, फिर तो बोल ही दिया हमने, विदेशियों से मुलाकात, मधुबन निवासियों से मुलाकात, सेवाधारियों से मुलाकात, सेवाधारियों से हो गया ना, हाँ मधुबन वरदान भूमि से। तो इस मुरली से क्या क्या लेंगे, अरे हाँ और एक चीज है, वहां पे तीन चीजें हैं सूक्ष्म वतन में, एक तो मनोरंजन है, मीटिंग है और फेस्टिवल्स है। स्वहेज उसको क्या कहा जाता है, जैसे उत्सव एक, और दूसरा है मिलन है, और तीसरा है बहलाना एंटरटेनमेंट। ये सब कहाँ है, सूक्ष्म वतन में है। सदैव अपने आप को सूक्ष्म वतनवासी समझो, बाबा ने कई बार कहा है। रिझाना, चलो और इस मुरली से क्या क्या धारण करेंगे, इस मुरली से क्या क्या धारण करेंगे? शुद्ध संकल्प की भाषा सीखनी है, क्योंकि वहां शुद्ध संकल्प होते हैं। वरदान में शुभ भावना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, साधारण और अशुद्ध भावना नहीं होना, यही कौन सी बुद्धि है? ये हंस बुद्धि है, होली हंस की निशानी है ये। अशुभ भी हो, अकल्याण का हो, तो उसको आपके कल्याण की वृत्ति से कल्याण में बदल दो। तो सारी मुरली से क्या क्या लेंगे, समान क्या क्या है हमारे? चलो सूक्ष्म वतन में एक मिनट बाबा के साथ जाकर, बाबा के समीप जाकर बैठना और बाबा की किरणों का अनुभव करना। बाबा को आने को आने में कितने दिन हैं? 10। तो 10 दिन में क्या क्या करना है? सबसे पहले तो पिछले सीजन की जितनी मुरलियां थी वो कहाँ कहाँ है उसको ढूंढो, जहां जहां रखी है और क्या क्या होमवर्क दिया है उनमें, उनको एक बार रिवाइज करना है ये 10 दिन में। दूसरा, अमृत वेले को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाना है, थोड़ा सा भी जरा सा भी उसमें नींद का असर ना हो, अमृत वेले को और ज्यादा शक्तिशाली बनाना है। मुरली का केवल सुनना, केवल पढ़ना नहीं है, क्या करना है? उसमें डूबना है, उसका चिंतन करना है, मनन करना है, अध्ययन करना है, पठन करना है, पाठन करना है, चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है, एक दूसरे से शेयर करनी है, ताकि वो हमारी बुद्धि में, मन में, सबकॉन्शियस माइंड में अंदर ही अंदर समा जाए और हम उसका धीरे धीरे स्वरूप बने, ताकि हमारी बुद्धि में ज्ञान के सिवा और कुछ ना हो। स्लोगन था ना, तुम्हारे ज्ञान का सिमरन करने वाले माया से बच जाते हैं, माया की आकर्षण से। हाँ, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास एक्यूरेट। तो ज्ञान का निरंतर चिंतन करना और अपने योग के चार्ट को भी बढ़ाना, चलता फिरता भी योग हो परंतु बैठा हुआ भी योग हो, तपस्वी है ना हम, तो बैठकर भी हमारा योग का चार्ट बढ़े, सुबह भी बढ़े और शाम को भी बढ़े, बढ़ाते बढ़ाते उसको 4 घंटे तक लाना है। बाबा के सामने ऐसे ही नहीं चले जाना है, हमको देखकर बाबा खुश हो जाए, कि ये है, ये है जिन्होंने पूरा होमवर्क करके आए हैं। क्यों आशीष भाई, क्या करेंगे और बाबा को खुश करने के लिए? या फिर ये संकल्प कि बाबा इस बार जो भी आएंगे और जो भी कहेंगे हम करके दिखाएंगे। किसकी खद्दी हिलेगी? चलो आपको बताएंगे बाद में। तो स्वयं की स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, 10 दिन हमारे पास है, और इस मुरली का फिर से एक बार चिंतन करना है, फिर से एक बार अध्ययन करना है। इस मुरली में बाबा ने क्या क्या समान दिए, कौन कौन सी बातें कही, कौन कौन से होमवर्क दिए, सफलता सेवाओं में कब होगी, सेवाओं के प्रति हमारी क्या एटीट्यूड हो, क्या हमारा दृष्टिकोण हो, स्वयं को क्या समझे, किस समान में रहे, किस स्मरण में रहे, ये सारी बातें का चिंतन करना है। ओम शांति।